अरे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने, इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने,
समर्थ बना दिया,
हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
ओम शांति। तपस्या के 13 दिन पूरे हुए, आज का 14वां दिन। 14वां दिन महत्वपूर्ण है, 14 वर्ष का वनवास, 14 दिन अर्थात जब कई देशों में 14वें साल में प्रवेश अर्थात व्यक्ति एडल्ट वयस्क हो रहा है, 13 साल तक वो बच्चा था, एडल्ट की एंट्री है। आज का सम्मान मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, अव्यक्त वाणी 26 मार्च 1993। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो। एक तो है बादशाह, राजा, सम्राट, और उसमें भी वो कैसा है, निश्चिंत, बेफिक्र, या थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्योंकि जब बाप ने अपनी जिम्मेवारी ले ली आप सब की, तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों, अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की, वह भी बाप के साथ साथ अकेले नहीं, तो क्या फिक्र है, कल क्या होगा ये फिक्र है, जॉब का फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है, क्योंकि जानते हो हमारे लिए जो भी होगा कैसा होगा, वो कितना अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, हमारे लिए जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, निश्चय है ना, पक्का निश्चय है या हिलता है कभी, जहां निश्चय पक्का है वहां निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है, ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है, या कभी सोचते हैं पता नहीं होगी या नहीं होगी, क्योंकि कल्प कल्प के विजयी है और सदा रहेंगे, ये आपका यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो, इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी है, इतना निश्चय है, कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे, तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हैं। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी क्या करते हैं, रत्नों को बाबा अपनी आंखों पर रखते हैं। ऐसे रत्न हो कि जिन्हें बाप दादा भी उन पर अपनी नजर दौड़ाते हैं। ऐसे रत्न हो जिनको बाप दादा भी दिल पे रखते हैं। ऐसे रत्न हो जिनको बाप दादा भी पलकों पर बिठाते, चांदी के डिब्बी में क्या करते, गले में हार बनाते, मस्तक में मस्तक मणि बनाते। ऐसे रत्न हो जिन्हें बाप दादा भी उन पर फक्र करते। ऐसे रत्न हो जिनको बाप दादा भी बाबा भगत पूजा करते, हाँ पालना ठीक है, माला में पिरोते। ऐसे रत्न हो जिनको बाप दादा भी महिमा करते, नैनों पे बिठाते महिमा करते। भक्त क्या करते ऐसे रत्नों का, कीर्तन करते हैं। अगले संडे की मुरली कर्म का कीर्तन करते हैं। ऐसे तुम रत्न हो तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। भक्त किसको याद करते हैं, भगवान को, और भगवान किसको याद करते हैं, हमको। बहुत मौज में रहते हो ना, ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना। तो आज क्या अभ्यास करना है, बेफिक्र बादशाह हूं। परंतु अभ्यास करना इसका अर्थ ये नहीं कि केवल रिपीट करते रहना या रिपीट करते रहना या लिखते रहना उसको। इनका अपना फायदा है, अफर्मेशंस जिसको कहते हैं, ऑटो सजेशंस जिसको कहते हैं, जो भी चीज मन को बताई जाए बार 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 बार, वो धीरे धीरे मन उसे स्वीकार करने लगता है, जिसको आत्म सुझाव कहा जाता है, ऑटो सजेशंस। लिखते रहना, लिखते 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 वो अंदर जाता है, उसको रिपीट करते रहना, अफर्मेशंस सोचते रहना, उसके ऊपर चिंतन करते रहना। ये सारी बातें अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर बाबा क्या चाहते हैं, अनुभव। और अनुभव जैसे कहा किस तल पर होता है, शरीर के तल पर। ये सारी जो चीजें हैं वो ज्यादा मन के तल की है, पर अनुभव जो गहरे है वो शरीर के तल वाले है। शरीर ने जिस चीज को टेस्ट कर लिया उसको भूलना कठिन है। कोई चीज बहुत अच्छी लगती है खाने में, कितने भी संकल्प करो, कितना भी कुछ करो, वो छूटती नहीं है। विकार क्यों इतने शक्तिशाली है, क्योंकि वो शरीर के तल पर काम करते हैं। हम उन्हें मन से वश में करने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रयास है और होना ही चाहिए, परंतु शरीर को हम भूल जाते हैं। तो अनुभव शरीर के तल पर भी हो तो चिंता, फिक्र, वरी, संसार में किन चीजों के लिए लोग चिंतित है, पहला भविष्य, फ्यूचर, हमारा क्या होगा, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा बीमारी, चौथा किस चीजों की चिंता है संसार में, खान पान की, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, अगला सुविधाएं, फ्यूचर, बुढ़ापा, वार्धक्य, बुढ़ापा, ओल्ड एज, कौन हमारी देखभाल करेगा, बहुत बड़ी चिंता है। अपनों का क्या होगा मरने के बाद, मृत्यु की चिंता, डेथ, हम मर ना जाए, हम मर ना जाए, मरने के बाद प्रॉपर्टी का क्या होगा? और क्या बताया? कुछ और पॉइंट बताई थी किसी? पैसों की चिंता, मनी, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल चिंता, और बच्चों की चिंता, मित्र संबंधियों की चिंता, और देश की चिंता। ऐसे बड़े कुछ कुछ है जो भाग्यशाली है जिनको देश की चिंता है, ऐसी तो कम मिलेंगे। और ना एनवायरमेंटल, तो पर्यावरण की चिंता, और हिसाब किताब, जॉब की रिलेटेड बहुत बड़ी चिंता है ये तो। नौकरी, नौकरी चली गई, कितनी चिंता रहती है, नौकरी नहीं है, मिली नहीं रही है, सब जगह कोशिश कर रहे। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई, महंगाई, उसके बाद में प्राकृतिक आपदा है, उसके बाद में अच्छा 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 युद्ध की चिंता, और आतंकवादी हमला ना, तो आतंकवादियों की चिंता, और कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, अब तक हम शेर थे, ये कौन आ गया बब्बर शेर जो हमसे आगे जा रहा है, उसकी चिंता, और पद प्रतिष्ठा खो जाने की चिंता, कुर्सी, कुर्सी जाने की चिंता, और साधनों की चिंता। एक सर्वे किया गया जिससे पता चला 40% जो चिंता है वो उन कारणों से है जो कभी होने ही वाले नहीं है। सोच रहे ये हो गया तो, पर वो होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा, न हुआ है आज तक। दूसरे को देखा बीमार है, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा, सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के, इतने चिंतित है, इतने चिंतित है। कोरोना काल में कई लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई है कि गाड़ी आएगी हमको पकड़ के ले जाएगी दूसरों को देखा है कई लोग 6 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकले बिल्कुल, और अभी निकलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा छोटा पड़ रहा है। 40% चिंता उन कारणों से है जो कभी होंगे ही नहीं। 30% चिंता उन कारणों से है जिनका अभी कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि वो अतीत है, पास्ट, फिर भी सोच रहे हैं उसी के बारे में, सोच रहे हैं जो पास्ट हो चुका, पास्ट इज पास्ट, नेक्स्ट संडे की मुरली। तीनों जानते हो तुम, तीनों कालों को जानते हो, पर उसी के बारे में सोच रहे, ये होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए था, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, बाकी सब लोग भी तो थे, बाकी सब लोग बहुत ठीक रहते, मेरे साथ बचपन से ऐसा ही हो रहा है। मेरे जो भाई बहने थे ना उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता था, मेरे तरफ कम। स्कूल में भी वैसा ही था, कॉलेज में भी वैसा ही था, लाइफ में भी वैसा ही है, हर चीज में वैसा ही है, मेरे साथ ही हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा ही होते आया है, मुझे कम ही मिला है, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा तो 30% चिंता किसकी वजह से है? पास्ट, कितने हो गए ये? 70%। 10% चिंता है बीमारी की वजह से, बीमारी, शरीर की बीमारी, ये बीमारी हो गई है, असाध्य रोग, और शरीर की बीमारी ऐसी है एक उंगली में भी अगर दर्द हो जान निकाल देती, पूरा शरीर को खींच लेती है, संपूर्ण देहभान प्रकट हो जाता है, केवल यह इतना सा दर्द है, एक उंगली में दर्द है बस, बाकी पैर को कुछ नहीं है, पर पैरों में भी कमजोरी लग रही है, इतना सा दर्द है पर इच्छा नहीं हो रही है कुछ करने की, इतना सा दर्द है पर मनोबल कम हो गया है दर्द से। शरीर का दर्द ऐसा होता है क्योंकि कहा ना, जो अनुभव शरीर के तल पर होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, पूरी आत्मा को नीचे खींच के लाते हैं, शरीर के तल पर जो होते हैं दर्द, जो भी अनुभव, छोटा सा इतना सा दर्द है एक उंगली में, पर अमृत वेले की इच्छा नहीं हो रही है, योग करने की इच्छा नहीं हो रही है, मुरली का चिंतन करने की इच्छा नहीं हो रही है, किसी को बता भी नहीं सकते ये सब इस उंगली के दर्द की वजह से हो रहा है, पर ये हो रहा है क्योंकि पूरी आत्मा को खींच लेता है शरीर नीचे। आज की मुरली में बड़ा शक्तिशाली वाक्य है, हर एक को अपनी मदद खुद करनी है, कोई किसी की मदद नहीं करेगा और किसी के बहकावे में भी नहीं आना है। पर तो आत्मा और शरीर इसको समझना, इनका क्या कनेक्शन है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझना, ये शरीर की क्या डिमांड्स है, शरीर को ये नहीं करना है, उसको नहीं, उसको डांटना नहीं है, नहीं डांटना नहीं है उसको, उसको समझना है उसको क्या चाहिए, क्योंकि विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं वो शरीर के तल पर उत्पन्न हो रहे हैं, वही शरीर जो कभी बहुत आनंदित होता है स्वास्थ्य में वो बीमारी में दुखी हो जाता है, मन मन को दुखी कर देता है, वही शरीर जिसमें प्रभु प्रेम जब आता है तो आंसू बहते हैं और जब भी काम विकार आता है तो उत्तेजनाएं आती है, वो वही शरीर है, इस शरीर की के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, इस शरीर की लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज को समझना है। नियम बहुत सारे बना के रख दिए, ऐसे ऐसे कड़े नियम बना, हम ये खाएंगे हम वो नहीं खाएंगे, हम इतने बजे खाएंगे हम उतने बजे के बाद नहीं खाएंगे, ये बहुत अच्छा है, पर वो नियम जब टूटते हैं तो बहुत दुख होता है फिर, क्योंकि शरीर की शायद डिमांड कुछ और है, शरीर को कुछ और चाहिए, इस शरीर को बहुत, शरीर को कौन समझाए, हम क्या, हमने अपने वैज्ञानिकों की मेडिकल साइंस की इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं शरीर के बारे में, सारी शरीर की बीमारियों के बारे में, एक एक अंग के बारे में, लीवर पर इतनी मोटी किताब है, लंग्स पर इतनी बड़ी किताब है, पर क्या फिर भी हमने इस बॉडी को समझ लिया है, क्या वास्तव में समझा है? अभी अभी एक पेशेंट एडमिट हुआ जिस नॉर्मल क्रिएटिनिन जो होता है किडनी का हमारा एक होता है, उसका था 33, फिर भी अच्छे से जिंदा है, 33 क्रिएट दोनों किडनी फेल, और अभी एडमिट भी इसलिए हुआ कि उल्टी हो रही थी, इसलिए वो उसके लिए नहीं हुआ, ये कैसे जिंदा था, आश्चर्य। ये ग्रासिया पेशेंट एडमिट होते हैं, बीच में एक पेशेंट एडमिट हुई जिसका हीमोग्लोबिन था 1.7 या हमारे ब्राह्मण आ जाते कभी ओपीडी में, डॉक्टर साहब हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया, कितना है 15, पहले कितना था, पहले 17 था, कुछ करो ना, कमजोरी भी तो लग रही है, और ये पेशेंट आते 1.7 हीमोग्लोबिन के साथ, आश्चर्य है, ये शरीर किस तरह अडेप्ट करता है, कैसे कार्य करता है, बड़ा रहस्यमयी है ये शरीर। हमने आत्मा को तो बहुत समझा है, खूब जाना है और खूब कोशिशें की है और खूब योग भी करते हैं, पर ये शरीर की तरफ ध्यान कम है। शरीर को जानना अर्थात ये नहीं कह रहे हम जाकर मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ो कि ये इसको कितना चाहिए, उसको कितना चाहिए, ये खाना है वो खाना है, वो नहीं, शरीर में उठने वाली संवेदनाएं, शरीर में उत्पन्न होने वाली उत्तेजनाएं, शरीर का स्वभाव, अभी भोजन कर लिया सब कुछ हो गया, कोई इच्छा नहीं है, अभी सोने वाले हैं, अचानक पता चला कि वहां वो चीज आई है जो हमारी पसंद की है खाने वाली, तो अभी भूख नहीं है फिर भी खा लिया, ये कैसे किया उसने, ये मन कर रहा है या शरीर कर रहा है, ये शरीर की डिमांड थी या मन की डिमांड थी, या दोनों का मिक्स, अपने आप में दोनों का क्या कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, बॉडी माइंड बॉडी माइंड बॉडी माइंड, क्योंकि मन में उत्पन्न विकार मन शरीर के द्वारा पूर्ण करता है, चाहे वो काम विकार हो, क्रोध हो, कुछ भी, विस्तार जो होता है, प्रगटीकरण जो होता है मन का, वो शरीर के तल पर होता है। तो एक बहुत सूक्ष्म टास्क है, इसलिए कहा कि शरीर को स्थिर करके बैठना और शरीर में क्या हो रहा है उसको भी समझने की कोशिश करना है। कहीं दर्द हो रहा है तो वो दर्द क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसको क्यों क्या नहीं, केवल देखना है उसको साक्षी होकर इस देह को। इसलिए नहीं कि इसमें आसक्ति हो, इसमें मोह हो, कुछ नहीं, केवल देखते रहना है, ये देह है। हाँ, और कौन कौन सी चिंताएं हैं ब्राह्मणों को, कौन कौन सी चिंताएं हैं? ये तो हो गई संसार, पुरुषार्थ की चिंता तो गिने चुने ना के बराबर, उंगलियों पर गिने ऐसे लोगों को होगी बस। पुरुषार्थ की चिंता हो जाए, बाबा ने कहा है चिंता के लिए क्या क्या, तुमको ओना हो लग जाए, तुमको फुरना ओना, तुमको फिकर, तुमको धुन, तुमको दांत लग जाए, और तुमको चिंता हो जाए, फिक्र हो जाए, तो पुरुषार्थ की, ये तो पॉजिटिव में आएगा। निगेटिव चिंताएं कौन कौन सी है? कुछ होगा वो बीमारी, जैसे संसार को इधर भी ऐसा, ये नहीं समझो, ये वो लोग हैं जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, ये वो लोग आत्मा परमात्मा, ये भी बीमार पड़ते, ये भी उतना ही बीमार पड़ते, ये मांसाहार करने वाले, ये शाकाहार, ये नहीं समझना कि शाकाहार करने वाले बीमार नहीं पड़ते, इनकी भी बहुत सारी बीमारी है, जो उधर है इधर वो इधर भी है। हाँ, इधर थोड़ी हिंसा कम है बस, बाकी है इधर सेम। और चिंता है इधर बीमारी, बहुत बड़ी चिंता है, डेथ, अपनी और स्वजनों की, अपनों से ज्यादा अपने मित्र संबंधी पति पत्नी बच्चे, बहुत गहरा मोह जागृत हो जाता है यहाँ ज्ञानियों में, बहुत गहरा मोह। ज्ञानियों को भी हमने बहुत रोते हुए देखा है, बहुत, और कोई 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 बहुत अचल, और कोई कोई ऐसा भी देखा है, जैसे कल ही एक माता आई थी ओपीडी में, उदास है अंदर से, पर उसका जो रिश्तेदार जो था वो कह रहा था कि इसके पति ने शरीर छोड़ा, ये बिल्कुल नहीं रोई, इसने ये दिखाया कि मैं ब्राह्मण परिवार की हूँ, ज्ञानी हूँ। फिर बेटी थी जवान, उसका भी डेथ हो गई, तब भी बिल्कुल रोई नहीं, कहीं ना कहीं सप्रेशन हो गया है, रो लेना चाहिए था, अच्छा हो गया होता, पर वो एक रहता है ना कि हम ज्ञानी हैं, आत्मा को जानते हैं, लोकलाज ब्राह्मण परिवार की, हम थोड़ी ना रोएंगे, हमको तो ये भी दिखाना है, पर वो इतना गहरा आंतरिक मोह, और उसमें ये सप्रेशन हो गया, और वो सप्रेशन रहते 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 अभी अजीब गरीब सिम्टम्स उसको चालू हो गए उस माता को। हमने कहा ठीक है, उसको एडमिट करना पड़ेगा, कुछ दिन बाद लेगा, वो बोले जाके वापस आता हूँ, दो दो घंटे में भूख लगती है उसको, खाती ही रहती है दिन भर। डिप्रेशन के दो साइंस होते हैं, एक तो भूख ही ना लगना और दूसरा भूख ही भूख लगना। डिप्रेशन के दो साइंस होते हैं, एक तो नींद ही नहीं आना, और दूसरा जो दिन भर नींद करते रहता, समझ लेना इसको कोई ना कोई उदासी है, अवसाद, डिप्रेस्ड है अंदर से। अच्छी बात, वो विकृत नींद है। एक होता है थक गए इसलिए सो रहे, वो थके नहीं है, उदास है। तो जहां सप्रेशन होता है, दमन, वहां कुछ अजीबोगरीब सिम्टम्स चालू हो जाते, रात भर पेशेंट बड़बड़ाते रहता है कुछ 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 कुछ। हाँ, एक तो बोलता ही नहीं है, किसी से बिल्कुल रूठा हुआ रहता है, वो भी डिप्रेशन का साइन है। या तो इतना बाह्यमुखी है, जो व्यक्ति मिलता है उससे बात करना चालू करता है, कोई भी हो, फिर वो रास्ते पे चलते चलते 10 लोगों से बात करना चालू करता है, इतना बात करता है, हर एक से बात करता है। जैसे एक पत्नी जिनका घर ऊपर था 10वें माले पर, तो वो कहती थी कि जब भी मेरा पति घर आता था तो उसको भोजन एकदम तैयार चालू, मैं चालू कब करती थी, जब वो नीचे पहुंच जाता था ना बिल्डिंग के, तब मैं भोजन बनाना चालू कर देती, क्योंकि उसको नीचे से ऊपर आने में आधा घंटा लग जाता है, क्यों, क्योंकि जो भी मिलेगा उससे वो बात करेगा, कोई भी हो, कोई भी, और बहुत बड़ी बड़ी बात करेगा। इसके लिए मैं जब उसका यहां पता चलता है, मैं देख लेती हूं, तब मैं चालू करती हूं, वॉचमैन होगा, हाँ फिर सुना और क्या चालू। इतना बाह्यमुखी क्यों है व्यक्ति? क्योंकि अंदर एक दुख है, वो उस दुख को छुपाना चाहता है। एक विश्व पश्चिम के एक विचारक ने लिखा है, मैं हंसता इसलिए हूं कि नहीं तो मैं रो दूंगा, क्यों हंसता हूं? क्योंकि अंदर दुख ही दुख है, अंदर आंसू ही आंसू है, इतने आंसू है कि मैं रो दूंगा, इसलिए मुझे दिखावा करना पड़ता है, एक मुखौटा पहन के घूमता हूं अंदर के दुख को छुपाने के लिए। पर यह कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई विधि नहीं है उससे मुक्त होने की। तो संसार में भी बहुत चिंताएं हैं और ब्राह्मण परिवारों में, ब्राह्मणों में भी सूक्ष्म चिंताएं हैं, बुढ़ापे की चिंता, बीमारी की चिंता, पैसों की, चलो मधुबन में तो कम, बट संसार में जो ब्राह्मण है उनको तो चिंता रहती है, परिवार की चिंता होती है, और रोटी कपड़ा मकान और भोजन की चिंता। हाँ, भोजन की तो एक टेंशन ही रहता है हमेशा कि आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। फिर बर्तनों की चिंता, वो काम वाली बाई आती है, वो आज आई नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। कपड़े की चिंता, धुलाई की चिंता, चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता। एक प्रोफेसर के यहाँ पर, जो उसके बहुत पुराने स्टूडेंट्स थे, जो कि अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ 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 बन गए हैं, और ऐसा गेट टुगेदर करने के लिए अपने पुराने कॉलेज के प्रोफेसर के पास मिलने आते हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती है सबको। अब कौन कौन, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई किस देश में, कोई किस देश में, वो सब कॉन्टेक्ट करते हैं फेसबुक पे, और फिर मिलने प्रोफेसर के यहाँ पहुँचते हैं। तो जब सब लोग मिलते हैं तो सब अपनी जीवन की बातें सुनाते हैं, 20 साल में हमने क्या क्या कर लिया, कहाँ कहाँ पहुँच गए, पर कितनी चिंताएं साथ में हो गई। और सबका एक पॉइंट कॉमन रहता है कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत वरी है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। वो प्रोफेसर बैठ के उनकी बातें सुनते रहता है, फिर अंदर जाता है, अंदर जाके वो कॉफ़ी लेके आता है, और कॉफ़ी जो लाता है वो बड़े जग में और अलग अलग बहुत सारे कप रखता है, पर हर कप अलग अलग है, कोई चांदी का है, कोई सोने का है, कोई सिल्वर का है, कोई डिजाइन वाला है, और एक दो कप ऐसे रखता है बिल्कुल साधारण, टूटे टूटे फूटे तो नहीं पर साधारण से। तो जितने लोग होते हैं वो सारे जो आए हुए सब अच्छे अच्छे कप ले लेते, और जो साधारण वाले हैं वो छोड़ देते। तो प्रोफेसर कहता है, देखो एक्चुअली तुमको क्या चाहिए थी, कॉफी, पर तुमको मतलब उससे नहीं था, पर तुमने फोकस किस पे किया है, कप पर। मेन चीज इज कॉफी, ये जो कॉफी है ये जीवन है, और ये जो कप है ये पद, प्रतिष्ठा, पैसा, संपत्ति, ये बाहरी सारा कुछ, ये बाहरी आवरण है। हमारा जो जीवन है वो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हमारा जीवन चालू होता है बी से लेके डी तक, बी अर्थात बर्थ, डी अर्थात डेथ, और इसके बीच में क्या है, सी, सी अर्थात चॉइस। ये हमारी चॉइस है, हम डिसाइड करेंगे आज खुश होना है या दुखी होना है। जैसे इसके पहले भी सुनाया था अब्दुल्ला, एक व्यक्ति मरते मरते इतना खुशी से मर रहा है, उसका शिष्य पूछता है, आप सारे दिन भर इतना खुश, जीवन भर इतना खुश रहे, अभी मरते समय भी इतना खुश, कोई भी दुख नहीं है, एक तो दुख होगा। वो कहता है नहीं है, कभी था ही नहीं। वो तो कैसे, वो कहता है वो अपने गुरु की बात सुनाता है, मेरे गुरु का नाम था अब्दुल्ला। तो वो क्या करता था, सुबह उठता था और अपने आप से बात करता था, अब्दुल्ला तुझे क्या चाहिए आज, खुशी चाहिए या दुख चाहिए? और फिर वो खुद ही आंसर देता था कि आज खुशी चाहिए, तो खुशी चाहिए ना, तो वो सारी चीजें करना जो खुशी दे, अगर दुख चाहिए तो वो सारी चीजें करना जिसमें दुख हो। ये चॉइस है हमारी, हम परिस्थितियों में दो ही व्यक्तियों के सामने समान परिस्थिति आती है, दो व्यक्ति दोनों को सेम बीमारी, ये पूरा हिल गया, ये कुछ भी नहीं इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं हो रहा है, दो व्यक्तियों के सामने अच्छा सा समान परिस्थितियां, एक बहुत खुश एक बहुत दुखी चिंतित। तो ब्राह्मणों में भी बहुत सारी चिंता है, तो ये भी कुछ सूक्ष्म चिंता है। और ब्राह्मणों की बात क्या, हम सब वास्तव में है मनुष्य, हमने 63 जन्म जो लिए है वो सब संस्कार आत्मा में है, बहुत गहराई में, हमें उस चिंता को देखना है बस, ये नहीं अपने आप को डांटना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, देखना है, क्योंकि आइडेंटिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है. अभी तक हम देख नहीं पाए हैं कि ये भी चिंता है. तो 40% क्या बताया, वो कारण है जो होने वाले नहीं है. 30% वो कारण है जो हो चुके हैं. 10% वो कारण है जो बीमारी की वजह से. 12% जो कारण है वो दूसरों से आए हुए हैं. और दूसरों से आए हुए मोस्टली क्रिटिसिज्म, जो दूसरों ने हमारा विरोध किया है, निंदा की है, ग्लानी की है, और अधिकतर वो असत्य है. वो सत्य नहीं है पर लोगों ने किया है हमारे साथ गलत, जो किया है. हम सही थे, लोगों ने हमसे गलत किया, उसकी चिंता है 12%. और कहा जाता है केवल बचा कितना, 8. केवल 8% ऐसी चीजें हैं जिसकी चिंता करनी चाहिए, पर वो 8% ऐसा है उसकी चिंता करने से वो कभी नहीं जाएंगी. वो रियल चिंता वाले विषय है, हाँ करनी चाहिए, पर वो भी चिंता करके थोड़ी ना जाने वाली है. तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है, ये जानना है कि मुझे किन बातों की फिक्र है, चिंता है. और बाबा ने चिंता को क्या कहा है, चिंता चिता है, आग है, जलाती है, जलन उत्पन्न करती है, बेचैनी है, व्याकुलता होती है, अजीब सी बेचैनी होती है, व्यक्ति सो नहीं पाता है, अंदर ही अंदर कुछ 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 होते रहता है, चिंता करते रहता है, नई नई कल्पनाएं करता है, इमेजिनेशन करता है, जो हुआ ही नहीं है अभी वो सोचते रहता है, अगर ये हो गया तो फिर क्या, बहुत आगे की सोचने लगता है, फ्लाइट्स ऑफ इमेजिनेशन. तो वरी, फिक्र, तुम कौन हो, बेफिक्र बादशाह. क्या करें अब चिंता से मुक्त होने के लिए, कैसे बन जाए बेफिक्र बादशाह. एक तो है खाली रिपीट करने से तो नहीं होगा, मैं बेफिक्र बादशाह हूं, बेफिक्र बादशाह हूं, बोलने से कुछ नहीं होगा. जैसे कहा, केवल रिपीटेशन का अपना महत्व है, परंतु वास्तव में मुक्त कैसे हो, क्या करें. पहले तो आइडेंटिफाई करो, जैसे कहा कि मेरी चिंता का कारण क्या है. बुढ़ापा है, किसने देखा है कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे क्या पता. आज का ही दिन ले लो, शाम तक मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसकी कोई गारंटी दे सकता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है क्या. सबसे पहले आइडेंटिफाई कि ये कारण है जिसके वजह से मैं चिंतित हूं, और फिर उसको देखना है क्या वास्तव में यह चिंता का कारण है. बीमारी आ जाए, बीमारी की चिंता, मृत्यु की चिंता, स्वजनों की चिंता, पैसों की चिंता, भोजन की चिंता, और इनके बारे में चिंता करके कुछ मिलने वाला है क्या. एक थोड़े देर रुक के ये सोचना है. एक व्यक्ति है जिसको परिवार की चिंता है, पर इनके बारे में सोच सोच के, चिंता कर करके क्या मैं उस चिंता से मुक्त हो जाऊंगा. जैसे एक प्रिजनर था, उसको दूसरे दिन फांसी होने वाली थी, पर वो क्रांतिकारी था और उसको पकड़ा इसलिए गया था कि वो सत्य का प्रचार करता था. आतताई, अत्याचारी राजा है. वो भी चिंतित हो गया रात को थोड़ा सा, पर अचानक उसके गुरु स्वप्न में आए और कहने लगे, मैंने तुमको क्या सिखाया था, कल आएगा नहीं आएगा हमको पता नहीं, लिव इन दिस मोमेंट बस, और निश्चिंत होके सो जाओ बस. उसको उसके गुरु की बात आ गई, याद आ गई कि इस पल में मुझे जीना है बस, आगे है ही नहीं भविष्य. वास्तव में ये जो तीन में जो है ना, केवल वर्तमान ही है. ये जो है फ्यूचर एंड पास्ट, दे आर नोन एज सूडो टाइम, दे डोंट एग्जिस्ट. भविष्य पास्ट तो हो चुका, भविष्य आया नहीं है. वर्तमान सत्य क्या है, केवल ये पल बस. उसके मन में आता है बस इस पल में मुझे जीना है, और आराम से सो जाता है बस. फिर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, कल का देखेंगे, आज तो आज जो है वो है. तो सबसे पहला आइडेंटिफाई क्यों हो रही है चिंता, दूसरा उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि वास्तव में ये चिंता योग्य है या नहीं है. तीसरा, इसको कहते हैं वरी ट्री. वरी ट्री क्या होता है, चिंता का झाड़. एक कारपेंटर है, बहुत काम किया दिन में और बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत व्यस्त था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उसके जॉब में, उस दिन बहुत परेशान रहा। तो मालिक देखता है बेचारा परेशान है, तो कहता है मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ, मेरी कार में बैठ के तुमको छोड़ देता हूँ, तुम जहाँ हो जाते हो तुम्हारा घर जहाँ है। वो कहता है ठीक है। दोनों जाते हैं, वो उतरता है और साहब को कहता है मेरा घर बस यहीं है, आप आ जाइए दो मिनट के लिए आप आए हो तो। तो वो साहब कहते ठीक है, उतरते हैं, दरवाज़ा ठक ठक करता है वो, पर वहाँ एक छोटा सा झाड़ है। तो वो क्या करता है, अपने ऐसा निकालता है, एक कुछ है नहीं, निकालने जैसा करता है और वहाँ लटका देता है। और अंदर जैसे घुसता है, अभी तक इतना परेशान, इतना दुखी, इतनी कंप्लेंट्स, एकदम एक नया व्यक्ति है अंदर, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, एकदम खुश। ये साहब एकदम से मैनेजर को एकदम शॉक लगता है, ये क्या वही व्यक्ति है क्या जो अभी तक दुखी था और उसको इतनी मुश्किल आते हुई उसकी जॉब में आज दिन भर। तो जाने का टाइम आता है, वो मैनेजर और वो दोनों बाहर निकलते, कार के पास पहुंचते, मैनेजर पूछते एक प्रश्न है, तुमने वो जो ये किया था ना वो क्या है? वो कहता है मेरी जो इतनी सारी चिंताएं है, मैं वो घर नहीं लेके जाना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ उसको सब बैग में डाल देता हूँ, अदृश्य बैग, इमेजिनरी बैग, और घर जाने से पहले वो जो झाड़ है ना उसमें टंगा देता हूँ और फिर निश्चिंत होके अंदर जाता हूँ। हाँ, और दूसरे दिन जब निकलता हूँ, बैग तो उधर ही है, वो तो लेना तो है ही, उससे तो मुक्त नहीं हुआ जा सकता, पर देखता हूँ उनका वजन कम हो गया है रात भर में, फिर लेके चलो कार्य में। तो ये व्यक्ति ने क्या किया, ये अनपढ़ व्यक्ति है, उसने अपनी कल्पना के आधार से ये निर्माण कर दिया कि मेरी जो चिंताएं है वो इधर। तो हम भी क्या करें, योग में अपनी चिंताओं को बैग में भर दो सारी, और अमृत वेला बाबा सामने सामने एक यज्ञ तैयार करो, अग्निकुंड, और क्या कर दो उसको, उसमें डाल दो। एक तो ये, या तो फिर बाबा के पास दे दो है ना, मैं बाद में ले जाऊंगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट रख रहा हूं, थोड़ी देर रखो मैं ले जाऊंगा बाद में, क्योंकि कल्पना, चिंता क्या है, काल्पनिक है, कल्पना को कल्पना से ही काटा जा सकता है, एक कल्पना को दूसरी कल्पना से काटो। तो वो भी एक उत्पन्न हुई है कल्पना से, इमेजिनेशन से, यहाँ एक नया इमेजिनेशन। ऐसे बहुत सारे योग के छोटे 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 प्रयोग करने हैं। जहां पर भी चिंता हुई, यहां से नीचे जाना है, मुझे बहुत उल्टियां होती है, पहले से ही सोच के रखा है, तो ज्यादा होती ही होती है, कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे प्रयोग करने पड़ेंगे कि जिससे ये ना हो, और वो प्रयोग मन में होंगे। यहां कुछ इमेजिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, तो फिर वो चीज नहीं होगी। हाँ, उल्टी आ रही, मतलब एक तो गीत सुनो, माइंड को डाइवर्ट कर दो, एक दूसरा दूसरा बातें करने से कई बार ज्यादा हो जाता है। सबसे बेस्ट है जिनको नीचे या ऊपर जाने में उल्टी आती है, जाने से पहले 3 से 4 घंटा नो फूड नो वाटर, कुछ ना खाने का ना पीने का, कुछ नहीं होता है फिर, कुछ नहीं। अगर आपको सुबह जाना है तो वहां जाके ही नाश्ता करना, फिर नीचे जाके, या नीचे से ऊपर आना है सुबह सुबह तो तुरंत अभी अभी खाया और चल पड़े तो फिर कुछ ना कुछ होगा, पेट पूरा खाली रहेगा ना, तो चढ़ते उतरते कुछ नहीं। एक ये, सेकंड डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांसों का लेने का और छोड़ने का एक मेथड है जिसको कहते हैं, ये मेथड हर एक को करनी है आज से, बॉक्स ब्रीदिंग, ये बहुत अच्छी मेथड है। और ये मेथड उसके लिए है इस पल में जीना, जो हम सिखा रहे हैं ना, श्वास की तरफ देखना, अर्थात श्वास वर्तमान है, श्वास लेते समय उसकी तरफ हमारा जब ध्यान है तो हम पास्ट का नहीं सोच रहे, ना ही फ्यूचर का सोच रहे, वर्तमान में जीना है। बॉक्स ब्रीदिंग कैसी होती है, बॉक्स अर्थात ये बॉक्स, ठीक है, 1 2 3 4 4 तक गिनते गिनते श्वास लेना, फिर उसको अंदर रोक के रखना 4 तक गिन के, 1 2 3 4, फिर छोड़ना 1 2 3 4, फिर बाहर रोक के रखना 1 2 3 4, फिर छोड़ना 1 2 3 4, फिर अंदर रोक के, फिर लेना 1 2 3 4 4 तक, फिर धीरे धीरे 6 कर दो उसको, फिर 10 थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना, जैसे लिया फिर रोक के रख दिया उतना ही समय, फिर छोड़ा उतना ही समय, फिर बाहर रोक के रख दिया उतना ही समय, और फिर लिया उतना ही समय। इससे क्या होगा? एक तो ये बढ़ेगा, इस पल में जीने का बढ़ेगा मूवमेंट एक। दूसरा अटेंशन, हमारा माइंड कितना कॉन्सेंट्रेट हो पाता है इसका अभ्यास। इसमें दो तीन प्राणायाम एक साथ समाये हुए हैं, बाह्य कुंभक सब 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 एक ही साथ समाया हुआ है। तो ये कब करना है? कई बार दिन में, कई बार दिन में इसको करते रहना। और जिनको दिन रात खाऊं 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 भूख लगती रहती है ना, उनके लिए ये बेस्ट है। इससे भूख कम होती है धीरे 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 धीरे। जिनको दिन रात भोजन की ही चिंता होती है, अभी अभी नाश्ता नहीं किया तो ये चिंता है दोपहर का क्या है, दोपहर का अभी खाना नहीं खा रहे तो शाम को आज क्या बनने वाला है रात्रि भोजन से पहले दिन रात वही वही चिंता। और भोजन एक ऐसी चीज है, जैसे अगर मुरली जाने से पहले हमें कोई बता देता है आज ये बना है, गया मुरली, अंतर मन में उसका चिंतन चालू हो जाता है। अब वो तो फिर अमृत पे लग गया अगर रात में ही पता चल जाए। इसलिए क्या बन रहा है ये एक दूसरे को नहीं बताना है। कई लोग आके फोन पे मैसेज आते हैं, आज नाश्ते में ये बनने वाला है। अरे क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है, मुरली सुनने जा रहे, इतनी एकाग्रता है, सोच के रखा है आज मुरली इस भाव से सुनेंगे, और कोई बता देता है आज ना डोसा बनने वाला है, और जैसे डोसा बनने वाला है अंदर ही अंदर सूक्ष्म चिंतन चालू हो गया डोसे का चिंतन चालू हो गया। ये स्वभाव है मन, इसलिए कहा ना शरीर को समझो, शरीर क्या डिमांड, शरीर और मन का क्या कनेक्शन है। जैसे शरीर ने कुछ, मन ने कुछ सोचा, वो शरीर पर आने लगता है उसका। इसलिए इस तरह की जो चीजें होती है ना टेम्पटेशन, पहले तो दूसरा हमको ना बताए, पर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जबरदस्ती आके बताएंगे, पर हम किसी को ना बताए कि आज भाई ये बन रहा है आज वो बन रहा है, क्योंकि ये डिस्कशन भी देह भान में लाने वाला है। तो ये जो ब्रीदिंग, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग, और इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, इससे स्टैमिना बढ़ेगा, इससे पावर बढ़ेगी, आयु भी लंबी होगी। क्योंकि सबसे जास्ती फास्ट ब्रीदिंग किसकी है? कुत्ता। कितना जीता है? बस। और कछुआ रेस्पिरेटरी रेट कितना है आशीष भाई कछुए का? मनुष्य का कितना है? 12 से 20 तक, या 16 ले लो 18, ये हमारा है। कछुए का कितना है? 4। एक मिनट में 4 बार सांस लेता है बस। इसलिए जीता कितना है? 300-400 वर्ष तक जीता है कछुआ, बहुत लंबा जीता है। कुत्ता हाफते रहता है, सबसे कम जीता है वो। जितनी श्वास कम उतनी आयु अधिक, जितना श्वास कम उतना मन स्थिर, जितना श्वास कम उतना एकाग्रता ज्यादा, उतना शरीर स्वस्थ। ये श्वास का संबंध शरीर और मन से है, तीन ही तो चीजें हैं, मन ब्रेथ बॉडी। इन तीनों का कनेक्शन ढूंढना है कैसा है। कभी मन पे काम किया हमने बहुत, इन दोनों को तो छोड़ के रख दिया है। ये मास्टर है दोनों का भी, पर ये सबसे कठिन काम है। उससे थोड़ा सिंपल काम है ब्रेथ वाला, ब्रेथ को कंट्रोल करके माइंड और बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा काम है बॉडी को कंट्रोल करके ब्रेथ और आत्मा को कंट्रोल किया जा सकता है। तीनों का आपस में कनेक्शन है, तीनों को समझना है। ये श्वास, क्रोध आता है देखो अपनी श्वास को कैसा, काम विकार जागता है तो श्वास की गति वो नहीं रहती है जो सामान्य योग की अवस्था में है। लोभ अगर आ गया, अभी अभी मुरली में बैठे किसी ने कान में आके बोल दिया आज क्या हलवा है, श्वास की गति बदल गई, श्वास की गति बदल चुकी है, बदल गई अपने आप। फिर तो ये सोचने लगता है गाजर का हलवा लूंगा, इतना खाऊंगा, फिर थोड़ा सा अगर मिल जाए तो डिब्बे में लेके अपने कमरे में रखूंगा, कमरे में कहां रखूंगा, पूरा चिंतन चालू हो जाता है, कंप्लीट प्लानिंग उसने तो शुभ भावना से बताया था। अभी हम एक चीज आज ही छोड़ी है हमने, ठीक है, आज से हमने संकल्प कर लिया जलेबी वो सब नहीं खाएंगे, पर किसी ने लाके दे दी, अब क्या करें, किसको दे। जैसे कल ही हमारी बहन आई, नाम नहीं बताऊंगा, उसका शुगर आ गया रिपोर्ट्स में, वो कहती है कल ही तो लड्डू मंगाए हैं बना के सेंटर से मधु अब क्या करूं, किसी को कैसे दू, और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, कल ही 2 डिब्बे मंगाए, क्या करूं,
दे भी नहीं सकते, इतना दिल। तो वरी ट्री स्क्वायर ब्रीदिंग, इसको आज कब करेंगे, कई बार दिन में बैठे हुए उसमें कोई कैसे भी बैठ के कर सकते। ऊपर लिया, अंदर रोक के रखा उतना ही समय, बाहर छोड़ा, बाहर छोड़ने में उतना ही टाइम, बाहर रोक के रखना एक राउंड पूरा, एक होने के बाद एक पूरा करो, फिर जब वापस लेते हो सेकंड, ऐसा कम से कम 7 बार 10 बार 20 बार इसको बढ़ाते जाना है बीच बीच में। नहीं नहीं, लंबा समय ये थक जाएंगे, 10 मिनट में थक जाते, 5 मिनट में थक जाते। और फिर इसका एक बहुत गहरा प्रयोग है परम धाम में इसको करना, ये आगे का प्रयोग है, ये अभी नहीं बताएंगे, पर ये धीरे धीरे फिर उसके बाद में योग और स्क्वायर ब्रीदिंग एक हो जाएगा, केवल परम धाम में स्क्वायर ब्रीदिंग का प्रयोग। ये कई भाई बहने हैं ऐसे यज्ञ में जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है स्क्वायर ब्रीदिंग में, और वो कहते हैं हम लोग केवल एक ही योग करते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग और परम धाम का, बस बाकी कोई योग है ही नहीं, सीधा बैठते ही बीज रूप और उसमें इस स्क्वायर ब्रीदिंग का प्रयोग। तो इतना पावरफुल योग होता है, बहुत पावरफुल, ना नींद ना कुछ ना कुछ, सीधा बैठो और 3 घंटा कब चले जाते पता ही नहीं चलता है बिना हिले डुले, क्योंकि ये प्राणायाम जैसा ही है, ब्रेथ कंट्रोल है। तो ये और क्या करेंगे चिंता से मुक्त होने के लिए, फिकर किसको दे दो, बाप को दे दो, और क्या ले लो, फकूर ले लो, ये बाबा ने कहा है। और चिंता से मुक्त होने के लिए क्या करेंगे, दूसरे लोगों को देखो, दूसरे भी तो दुनिया में कितने हैं हमसे दुखी। आई हैड द ब्लूज बिकॉज आई हैड नो शूज अंटिल अपॉन द स्ट्रीट आई मेट अ मैन हु हैड नो शूज अननो लेग्स नो फीट। मैं दुखी इसलिए था कि मेरे पास शूज नहीं थे, पर रास्ते में कब तक था, जब रास्ते में एक आदमी को देखो जिसको पैर ही नहीं है, तब तक था, तब मेरा दुख हट गया। और चिंता से मुक्त होने की विधि, बाबा को दे दो, सौंप दो। चिंता से मुक्त होने की विधि, वॉकिंग, वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सरसाइज है वॉकिंग, लंबी वॉक को चले जाओ, एक विचार ले लो ये चिंता है ना मुझे सोचना है, और लॉन्ग वॉक कितना, 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना, पानी की बोतल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और अकेले निकल पड़ो, किसी के साथ लिया किसी को तो बातें चालू और नई चिंताएं चालू हो जाएगी। अच्छा नकी है, सोचो आज मुझे नकी के 5 राउंड लगाने, टोटल 5 राउंड्स, पहला पूरा किया, पहला एक क्लास सुन लो आधा घंटा, दूसरा वही क्लास रिपीट करो, तीसरा क्लास बंद, अब उस क्लास को 3rd राउंड में रिपीट करो क्या था, चौथा उस क्लास को भी छोड़ दो क्योंकि उस क्लास से सुनते सुनते कोई नई बातें मन में आ गई है, नए विचार उत्पन्न हुए, पांचवा जो चिंता थी जिसकी वजह से परेशान थे, 5वां राउंड लगाते लगाते 5 राउंड 1 घंटा हो गया, और जब निकल के आओगे तो फिर वो व्यक्ति नहीं रहोगे जो जिसने चालू किया था। दूसरा हो जाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग हाइकिंग, उससे भी अच्छा होता है ट्रैकिंग, वो भी बहुत अच्छा है, जंगल स्नान, पता है जंगल बात, जंगल स्नान अर्थात जंगलों में ग्रुप के साथ आप लोग जैसे जाते हैं ना उसको कहते हैं जंगल स्नान। दूसरा है माउंटेन्स, माउंटेन्स में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, ट्रीज जो होती है ना, ट्रीज हगिंग पता है, ट्रीज हग, झाड़ बड़ा झाड़ होता है ना उसको गले लगाना, तो बहुत ऐसा फील करना इसमें से सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, जहां ग्रीन ट्रीज होते हैं, ट्रीज इसको कहते हैं ट्री हगिंग, वो है जंगल स्नान, जंगलों में घूमना, पूरा जंगलों में घूमने के बाद में चिंता नहीं रहेगी, हो ही नहीं सकता। हाँ चट्टान, ट्री हगिंग, माउंटेन हगिंग, शांति। वो तो मन की बात है, चलो शांति स्तंभ भी पकड़ लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये मन को ऊर्जा से भर देती है, क्योंकि प्राण ऊर्जा है सब जगह, प्राण अर्थात हवा नहीं, प्राण अर्थात श्वास नहीं, प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक न्यूट्रिशन, उसी में न्यूट्रिशन है। बर्फ में चलना, समुद्र किनारे समुद्र को देखना, पहाड़ों पर, ये सारी प्रकृति की जगह है, कल कल निनाद करते झरने, नदिया, बीच, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, और वहां जाके ये स्क्वायर ब्रीदिंग करना है। स्क्वायर ब्रीदिंग ऐसी जगहों पर जब करते हैं तो भोजन की इच्छा ही नहीं होती है, भोजन की याद ही नहीं आती है, मन शरीर से ऊपर उठ जाता है, वहां पे भी जाके बैठो, वो तो अच्छी जगह है, शमशान घाट में चले जाओ, चिताओं को देखो, पर ये सारी जो चीजें करनी है उसमें दो ही चीजें याद रखनी है, मौन और एकांत। किसी को साथ लिया और उसको बताया मैं ये कर रहा हूं, गए, चुपचाप करनी है और चुप और एकांत में करनी है। और चिंता से मुक्त होने की विधि अगर कुछ है, फिक्र चिंता वरी, आशीष भाई और उसको स्वीकार कर लो, जो चीजें बदल ही नहीं सकते हम, अब ऐसा ही है, क्या करें, अब उसी के साथ काम करना है, उसका वही स्वभाव है, उसके साथ कुछ कुछ भी पूछो तो चिढ़ता है, एकदम भड़कता है, पर उसके साथ ही काम करना है, क्या किया जा सकता है। हाँ, और कोई कोई इतना सेंसिटिव है, हमको ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना है, उसको एक वर्ड भी बोल दो ना तो आंसू आ जाते हैं उसको, फिर हो गया उसका मूड ऑफ, अब उसके साथ काम करना है, कितना मुश्किल काम है। उसको कोई अगर कहो कि मुझे थोड़ा काम है तुम ये देख लोगे, बस नाराज, मोदर, बात बात में चिढ़ता है, बात बात में नाराज होता है, हाईली, उसको क्या कहते हैं, HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन, फीलिंग देवी, फीलिंग देवियों के साथ काम करना, देवी अर्थात कोई पुरुष और स्त्री की बात नहीं है, दोनों है इसमें, ये बहुत मुश्किल काम है। तो हम बात कर रहे थे लास्ट पॉइंट, एक्सेप्ट इट, कुछ कुछ चीजें जीवन की क्या करनी है, स्वीकार कर, दुख को भी स्वीकार कर लो ये है, हार को भी स्वीकार कर लो ये है, स्वीकार अर्थात ये नहीं कि हम उसको बदलेंगे नहीं, स्वीकार अर्थात पॉजिटिव आउटलुक, दुख हो या सुख हो जब सदा संग रहे ना कोई, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना होए, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना, दुख को ही साथी बना दिया तो दुख हो ही नहीं। एक्सेप्ट कर लो चीजों को, दूर है गीत गाना, डांस करना, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है बताएं, डांस एंड खेलना, जिसको कुछ भी नहीं करना है, जो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, उनको 15 मिनट तक कमरा में अपने बंद कर लो और डांस चालू कर दो पूरा फुल, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, डांस जैसी कोई एक्सरसाइज नहीं है दुनिया में। और दूसरा खेलकूद, 15 मिनट 20 मिनट फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, जो वॉलीबॉल खेलो, ये दो ऐसी चीजें हैं, जो लोग ये दो करते उन्हें ना आसन, प्राणायाम, जिम्नेशियम कुछ की जरूरत नहीं है, डांस में सब कुछ आ गया, पर अच्छा सा डांस करो, गीत बीत लगा के या गीत गाओ जो करना है वो कर सकते हो। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है, पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। ये तो मनुष्यों के लिए कह रहे हैं, हमें तो भगवान का सहारा है, भगवान का प्यार है, हमराह तेरा कोई अपना तो है, वो खुद हमारा अपना है, सुख है एक छाव ढलती, और सुख तो क्या आता है चला जाता है, रहता परमानेंट कौन है, दुख, तो उसके साथ दोस्ती कर लो, दुख तो थोड़ा थोड़ा सुख सुख आता है बस, ज्यादा नहीं आता है, दुख हो तब, दुख हो कोई तब जलते हैं पथ के दीप निगाहों में, दुख ही वो दीपक है जो रोशनी देंगे, दुख क्या है, मेरी राह के दीपक है जो मुझे रोशनी देते, इतनी बड़ी इस दुनिया में लंबी अकेली राहों में, हमराह तेरा कोई अपना तो है, सुख है एक छाव ढलती, आती है जाती है। ओम शांति।
दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। प्यार हमारा क्या कम है, पग में कांटे लाख सही पर ये सहारा क्या कम है, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ, 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 सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हो कोई तब जलते हैं पथ के दीप निगाहों में, इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ, 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 ओ सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है।